आप आशुतोष कृष्ण शास्त्री से निरंतर तृतीय अध्याय के बारे में सुन रहे हैं। तृतीय अध्याय के 43वें श्लोक में भगवान मनु सवर्ण असवर्ण कन्या से विवाह करने की विधि बतलाते हैं।
पाणिग्रहाण संस्कार सवर्णाशुपदिश्यते असवर्णा स्वयं गेयो विदिरुद्वाह कर्मणि शरह क्षत्रियाग्राह्य प्रतोदो वैश्यकन्यया वसन्यस्य दशाग्राह्या शूद्रयो कृष्टवेदने।
पाणिग्रहण संस्कार हाथ पकड़कर विवाह करने की विधि पूरा करने का संस्कार, तो सुवर्णासु उपदिश्यति केवल अपने वर्ण की स्त्रियों से विहित है। असवर्णासु अपने वर्ण से भिन्न वर्ण की स्त्रियों से विवाह करने में, उद्वाह कर्मणि विवाह संस्कार में, अपम विधिम गेयः यह विधान समझना चाहिए। उत्कृष्ट वेदने अपने से ऊंचे वर्ण वाले व्यक्ति के साथ विवाह करने पर, क्षत्रियया शरह ग्राहिया क्षत्रिय कन्या को हाथ पकड़ने की अपेक्षा बाण पकड़कर विवाह करना चाहिए। वैश्य कन्या प्रतोता और वैश्य वर्ण की कन्या को बैल आदि को हांकने वाले चाबुक को पकड़कर विवाह करना चाहिए। शूद्रया वसनस्य दस्या ग्राह्या और शूद्र कन्या से विवाह करने पर वस्त्र का किराना पकड़ना चाहिए। भगवान मनु के इन श्लोकों में कुछ ब्राह्मण शंका करते हुए कहते हैं कि ये 43 और 44 श्लोक प्रक्षिप्त हैं, क्योंकि इनमें अंतर्विरोध दृष्टिगोचर होता है। पहले जो विवाह कहे गए हैं उन विवाहों में यह कहना चाहिए कि उन विवाहों का भेद उनकी विधि की भिन्नता पर ही आधारित है। इन श्लोकों में विवाह की उनसे भिन्न विधियां उक्त हैं, यह भिन्नता विरोध सूचक है। यहां पर 34वें श्लोक में जो विधियां कही गई हैं वे सभी वर्णों के लिए समान हैं। उनमें मनु ने कोई असवर्ण सवर्ण का भेद नहीं किया। इन श्लोकों में वर्णों और सवर्ण असवर्ण का भेद नहीं होता, और यहां पर जो असवर्ण और सवर्ण में भेद दिखाया गया है यह मान्यता के विरुद्ध है। जो विधियां इन श्लोकों में कही गई हैं वे अंतिम तीन विवाहों में तो लागू ही नहीं हो सकती। गांधर्व विवाह में स्त्री पुरुष का स्वेच्छा से संयोग होता है, राक्षस विवाह में अपहरण होता है, पैसाच विवाह में बलात्कार पूर्वक संबंध स्थापित करने को कहते हैं। अतः इन श्लोकों में उक्त विधियों को करने से तीनों विवाहों का अवसर ही नहीं रहता। इस प्रकार इन विधियों को मनु की पूर्वोक्त श्लोकों की व्यवस्था से तालमेल नहीं बैठता। इससे स्पष्ट है कि ये विधान परवर्ती काल के हैं। इन अंतर विरोधों के कारण ये दोनों श्लोक प्रक्षिप्त हैं। 45वें श्लोक में ऋतुकाल गमन संबंधी विधान बताया गया है।
ऋतु कालाभिघाषी स्यात् स्वदार निरतः सदा पर्ववरजं व्रजेक्षैणां तद्व्रतो रतिकाम्यया।
ऋतकालाभिगामी स्यात् सदा पुरुष ऋतुकाल में स्त्री का समागमन करे, स्वदार निरतः सदा और अपनी स्त्री के बिना दूसरी का सर्वथा त्याग रखे। वैसे स्त्री भी अपने विवाहित पुरुष को छोड़कर अन्य पुरुषों से सदैव पृथक रहे। तद्व्रता, जो स्त्री व्रत अर्थात अपनी विवाहित स्त्री से ही प्रसन्न रहता है, जैसे कि पतिव्रता स्त्री अपने विवाहित पुरुष को दूसरे पुरुष के संग नहीं करती। रतिकाम्या, वह पुरुष जब ऋतुदान देना हो तब
एनाम परजम वरजम ब्रजेत,
एनाम पर्व वरजम ब्रजेत अर्थात पर्व अर्थात जो उन ऋतुदान के 16 दिनों में पौर्णमासी अमावस्या चतुर्दशी व अष्टमी आवे उसको छोड़ देवे, इसमें स्त्री पुरुष रतिक्रिया कभी न करें। यहां पर जब विद्वान विचार करते हैं तो इसमें तीन बातें देखने को मिलती हैं। पहली तो ऋतुदान में वर्जित पर्व और पर्व दिनों में समागम निषेध क्यों है। तीसरी बात, ऋतुकाल में गमन गृहस्थ का आवश्यक कर्तव्य है, अर्थात ऋतुदान में वर्जित पर्व। ऋतुदान में वर्जित पर्व के बारे में पौर्णिमा अमावस्या अष्टमी और चतुर्दशी है। पर्व दिनों में समागम क्यों निषेध क्यों है? इन पर्व दिनों में समागम का निषेध इसलिए है क्योंकि इन दिनों में मनु ने धार्मिक दिन के रूप में मनाने का विधान करते हुए इन दिनों में विशेष यज्ञों का आयोजन एवं वेदादि ग्रंथों में स्वाध्याय का विधान किया है। इन धार्मिक कृत्यों के पालन के अवसर पर जितेंद्रिय रहना, संयम रखना आवश्यक है क्योंकि अजितेंद्रिय अवस्था में इन धार्मिक कर्मों के फल सिद्ध नहीं होते। ऋतुकाल में गमन गृहस्थ का आवश्यक धर्म है, इसके बारे में विद्वान कहते हैं गृहस्थ हो जाने पर व्यक्ति के लिए ऋतुकाल में स्त्री गमन सहवास करना अत्यंत आवश्यक है, उसका कर्तव्य बनता है। इसलिए मनु ने कहा है ऋतुकालाभिगामीशात पर्ववरजं ब्रजेत, अर्थात इस पर प्रकाश डालते हुए आचार्य कौटिल्य ने कारण पूर्वक इस कर्तव्य को पालन करना आवश्यक बताया है और इसको गृहस्थ के धर्म का अंग बताया है। इसका पालन न करने पर उसके लिए दंडा अवस्था भी निर्धारित की है। वे कहते हैं ऋतुकाल में गमन न करने से स्त्रियों के पथभ्रष्ट होने, उनका आचरण दूषित होने की आशंका रहती है। ऋतुकाल में गमन न करना अपने गृहस्थ धर्म का पालन न करना है और ऐसे व्यक्ति को कर्तव्य पालन करने पर उसको धर्म मिलता है और पालन न करने पर उसके लिए दंड का विधान निर्धारित किया गया।
तीर्थोपराधो हि धर्मवदः इति कौटिल्य, तीर्थ गूहमना गमने यण्वति दंडः।
किंतु कामना रहित स्वयं स्त्री के साथ भी बलात् गमन न करे।
नाकामुमुपैयात,
अर्थात इसी कारण मनु ने पति के दीर्घ प्रवास काल में स्त्री के नियोग द्वारा संतान प्राप्त करने की स्वीकृति दी है। कौटिल्य ने भी इसका समर्थन और विधान किया है। 46वें श्लोक में स्त्रियों के स्वाभाविक ऋतुकाल के बारे में बताया गया है।
ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः खोडशास्नता चतुर्भिर् ऋतरैः सार्ध महोभिः षद्विगर्हितैः।
स्त्रीणां स्वाभाविक ऋतुः, स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल खोडश रात्रया स्मृतः 16 रात्रियों का है, अर्थात रजो दर्शन के दिन से लेकर 16वें दिन तक ऋतु समय है। इतरई सद गरिहितैः चतुर्भिः अहोभिः सार्धम्, उनमें से प्रथम की चार रात्रि जिस दिन रजस्वला हो उस दिन से लेकर चार दिन निंदित है। प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ रात्रि में पुरुष स्त्री का स्पर्श और स्त्री पुरुष का स्पर्श अथवा स्त्री पुरुष का संबंध कभी नहीं होता, नहीं करना चाहिए। अर्थात उस रजस्वला के हाथ का छुआ पानी भी नहीं पीना चाहिए। न वह स्त्री कुछ काम करे किंतु एकांत में बैठी रहे, क्योंकि इन चार रात्रियों में समागम करना व्यर्थ और महारोगकारक कहा गया है। 47वें श्लोक में निंदित रात्रियों के बारे में बताया गया है।
तासामाद्याश्चतस्रु निंदितैकादशी चया त्रयोदशी च शेषस्तु प्रशस्तादश रात्रयः।
तासाम आद्याः चतस्राः तु निंदिताः, जैसे प्रथम की चार रात्रि ऋतु देने में निंदित है, या एकादशी चत्रयोदशी, वैसी ग्यारहवीं और तेरहवीं रात भी निंदित है। शेषासु दशरात्रयः प्रशस्ताः, और बाकी रही दशरात्रि शो ऋतुदान के लिए श्रेष्ठ है। ऋतु गमन में निषिद्ध रात्रियों के बारे में भगवान कहते हैं। 46वें श्लोक में स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल 16 रात्रि का माना जाता है, उसमें रजोदर्शन के दिन की रात्रि सहित प्रथम चार रात्रियां निंदित हैं। इस प्रकार रजोदर्शन के दिन से 11वीं और 13वीं रात्रि भी ऋतुदान में निंदित है। इस प्रकार 16 रात्रियों में 10 रात्रियां ऋतुदान के लिए सर्वश्रेष्ठ बचती हैं, किंतु इन 10 रात्रियों के बीच यदि कोई पर्व अमावस्या पौर्णमासी अष्टमी चतुर्दशी दिन आए तो उस रात्रि में ऋतुदान नहीं करना चाहिए, ऐसा स्पष्ट निर्देश है। इस प्रकार कभी 7-8 तो कभी 10 रात्रियां ऋतुदान के लिए शेष रहती हैं। ऋतुकाल की निश्चित रात्रियों के कारण रजोदर्शन के काल में स्त्री गमन से व्यक्ति की प्रज्ञा तेज बल ज्योति आयु की हानि होता है, इसीलिए रजोदर्शन के काल में स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। 48वें श्लोक में पुत्र और पुत्री प्राप्त्यर्थ रात्रि की पृथक्यता बताई गई है।
युग्माशु पुत्रा जायन्ते श्रियो युग्माशु रात्रिषु तस्माद्यगामाशु पुत्रार्थी संविषेदार्थवे स्त्रियम्।
युष्मासु पुत्राः जायन्ते, युग्म अर्थात सम संख्या की रात्रियों छठी आठवीं दशमी द्वादशी चतुर्दशी खोडशी में समागम करने से पुत्र उत्पन्न होते हैं। अयुग्माशु रात्रिषु स्त्रियः, विषम संख्या वाली अर्थात पांचवीं सातवीं नौवीं पंद्रहवीं रात्रियों में लड़की जन्म लेती है। तस्मात् इसलिए पुत्रार्थी पुत्र की इच्छा रखने वाले पुरुष को आर्तवें युग्मासु स्त्रियं संविशेत, ऋतुकाल में शम रात्रियों में स्त्रियों से समागम करना चाहिए। अर्थात जिनको पुत्र की इच्छा हो वे छठी आठवीं दसवीं बारहवीं चौदहवीं और सोलहवीं रात्रियों में, इन छह रात्रियों में सहवास करे, परंतु इनमें भी उत्तर उत्तर श्रेष्ठ है। और जिनको कन्या की इच्छा होवे वे पांचवीं सातवीं नौवीं और पंद्रहवीं ये चार रात्रियां उत्तम समझे, इसमें पुत्रार्थी युग्म रात्रियों में ऋतुदान देवे। उनचासवें श्लोक में पुत्र और पुत्री होने के कारण बताए गए हैं।
पुमान पुंशोधिके शुक्रे स्त्री भवत्यधिके स्त्रियः समीपमान पुमंस्त्रियौ वाक्षीणीलपे विपर्यः।
पुंस अधिके शुक्रे पुमान, पुरुष के अधिक वीर होने से पुत्रः स्त्रियां अधिके स्त्री, स्त्रिया का आर्तव अधिक होने से कन्या, समय अनुपान तुल्य होने से नपुंसक, पुरुष व बंध्या स्त्री उत्पन्न होती है। क्षीणे च अल्पे विपर्या, क्षीण और अल्पवीर से गर्भ का न रहना व गिर जाना भवति होता है। यहां पर पुमान पुंशोधिके शुक्रे स्त्री भवत अधिके स्त्रियः, अधिक शब्द से क्या अभिप्राय है? यहां अधिक शब्द से मात्र मात्राधिक्य अभिप्राय नहीं है, अपितु सामर्थ्याधिक्य अभिप्राय है। पुरुष के वीर्य में अधिक सामर्थ्य अथवा पुरुष बीज में अधिक सामर्थ्य वाली स्त्री होने पर पुत्र उत्पत्ति होती है। पुरुष की तुलना में स्त्री बीज के अधिक सामर्थ्य वाली होने से पुत्री अर्थात सामर्थ्य होने पर लड़का लड़की का जोड़ा बन जाता है। जब इन दोनों वीर्यों का सामर्थ्य समान हो जाता है तब नपुंसक जन्म लेता है, और कम वीर पर गर्भ बन जाने पर गर्भस्राव हो जाता है। यहां पर एक बात और देखने को मिलती है कि यहां पर आधुनिक चिकित्सा विधान से भी इस श्लोक का विरोध नहीं ज्ञात होता। अधिकतर लोगों का विचार है कि मनु की मान्यता का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की मान्यता से विरोध आता है, लेकिन मूलतः ऐसा नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के मतानुसार पुरुष के वीर्य में दो प्रकार के शुक्राणु होते हैं, एक तो एक्स दूसरा वाई। स्त्री के रज में केवल एक्स कीटाणु होते हैं, पुरुष का वाई शुक्राणु जब स्त्री के एक्स कीटाणु से मिलता है तब लड़का होता है, एक्स एक्स से मिलने पर लड़की होता है। संयोग के पश्चात ये शुक्राणु गर्भ नलिकाओं में दौड़कर स्त्री के डिंब में प्रवेश करते हैं। जो शुक्राणु पहले प्रवेश कर जाता है वही संतान रूप बनता है। यह भी मूल बात है कि जो शुक्राणु जितना प्रबल होगा उतना ही पहले जाकर डिंब में प्रवेश करेगा। पुरुष शुक्रकीट अधिक प्रबल होंगे तो वे दौड़कर पहले प्रवेश करेंगे, यदि स्त्री के जन्म वाले कीट प्रबल होंगे तो वे प्रथम प्रवेश करेंगे। यहां भी सामर्थ्य की अधिकता ही पुत्र पुत्री की उत्पत्ति में मूलाधार है, इसलिए आयुर्वेद चिकित्सा से इस श्लोक को प्रमाण मिलता है। 50वें श्लोक में भगवान मनु ने संयम गृहस्थ भी ब्रह्मचारी के रूप में बताया है। निंदा स्वष्टा सुचान्यासु स्त्रियो रात्रिषु विवर्जनन ब्राह्मचार्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन। निंदासु च अन्यासु अष्टासु रात्रिषु, निंदित 6 रात्रियों में और इनसे भिन्न 10 रात्रियों में से किन्हीं 8 रात्रियों में स्त्रियः विवर्जयन, स्त्रियों को छोड़ते हुए अर्थात उनसे समागम न करते हुए यत्र तत्र आश्रमे वशन गृहस्थ काल में भी रहते हुए वह ब्रह्मचारी एव भवत, ब्रह्मचारी ही होता है। पूर्व निंदित 8 रात्रि जो कहे गए हैं उनमें जो स्त्री का संग छोड़ देता है वह गृहस्थ आश्रम में बचता हुआ भी ब्रह्मचारी ही कहलाता है। यहां पर विद्वान विवेचन करते हुए कहते हैं कौन गृहस्थ ब्रह्मचारी, निंदित छह और शेष कोई भी आठ रात्रियां अर्थात 14 रात्रियों को छोड़कर 16 में से शेष बची केवल किन्हीं 2 रात्रियों में ही समागम करने वाला गृहस्थ ब्रह्मचारी के समान होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति में संयम और जितेंद्रियता गुण की प्रधानता होती है। 51वें श्लोक में वर से कन्या का मूल्य लेने का निषेध बताया गया है। न कन्याया पिता विद्वान गृहीयाक्षुकमण्वपि ग्रहक्षुकम हिलोभेन शान्नरोपस्त्यविक्रयो। विद्वान कन्याया पिता, बुद्धिमान कन्या के पिता को चाहिए कि वह कन्या के विवाह में अणु अपि शुल्कम न ग्रहीयात, थोड़ा सा भी शुल्क मोल या धन न ले। लोभेन शुक्लम गृहीरन ही, लोभ में आकर शुल्क लेने पर नरह वह मनुष्य अपत्य विक्रयो स्यात्, अपत्य विक्रयी स्यात्, संतान को बेचने वाला ही कहता है। स्त्री धनानुते मोहात् उपहजीवन्ति बन्धवाः नारीयानानि वस्त्रं वा ते पापायोन्ति धोगतिम्। ये बांधवाः, जो वर के बांधव पिता भाई आदि रिश्तेदार मोहात लोभ या तृष्णा के वशीभूत होकर स्त्री धनानी कन्याओं के धनों को नारीयानानि वा वस्त्रं, कन्या पक्ष या कन्याओं की सवारी या वस्त्रों को लेकर उपजीवंती उपभोग करते हैं, ते पापाह अधोगतिम यान्ति, वे पापी लोग नीच गति को प्राप्त होते हैं। प्रमुखता 6 प्रकार का धन स्त्री धन बताया गया है। एक तो अध्यग्नि विवाह संस्कार के अवसर पर दिया गया धन, दूसरा आदि आह्वनिक पति के घर आते हुए पिता के घर से कन्या को प्राप्त धन, दूसरा प्रीति कर्म में प्राप्त धन प्रसन्नता आदि के अवसर पर पति द्वारा प्रदत्त धन, कन्या को भाई से प्राप्त धन, पिता से प्राप्त धन, माता से प्राप्त धन, इस प्रकार से 6 प्रकार के धन बताए गए हैं, जिसका विस्तृत वर्णन भगवान मनु ने 9वां अध्याय में किया है। अगले श्लोक में जो आर्ष विवाह में गोयुगल लेने का विधान था उसका निषेध किया गया। आर्षे गो मिथनम शुल्कम केचित् दाहुर्मृषैव तत् अल्पोप्येवं महान् वापि विक्रयस्तावदेवशः। केचित कुत लोगों ने आर्ष विवाह में गोमिथुनम शुल्कम एक बैल के जोड़े का शुल्क लेने पर कथन किया है, वह मृषा एवं वो गलत है, मिथ्या ही है। अपि एवं, क्योंकि इस प्रकार अल्पः अपि वा महान, थोड़ा या अधिक धन लेना सतावत व निश्चय में विक्रय बेचना ही है, कुछ भी न ले देकर दोनों की प्रसन्नता से पाणि ग्रहण होना ही आर्ष विवाह है। 54वें श्लोक में यासाम नादयते शुल्कम ज्ञायतो न शविक्रयः अरहणम तत्कुमारीणाम आनसंशस्य केवलम्। अर्थात ज्ञातयः, कन्या के पिता या आदि या रिश्तेदार यासाम शुक्लम न आददते, जिन कन्याओं के विवाह के लिए वर पक्ष से कुछ शुल्क नहीं देते, अर्थात वर पक्ष से विवाह करके बदले में बिना कुछ धन के विवाह कर लेते हैं, स विक्रयः नः। इस प्रकार विवाह कन्याओं को बेचना नहीं कहलाता। तत्कुमारीणाम हरणम अरहणम, ऐसा विवाह वास्तव में कन्याओं का पूजा सत्कार होता है। च केवलम आनृशंस्यम, और केवल कन्याओं के प्रति वास्तव में दया और स्नेह प्रदर्शित करना, बिना कुछ लिए वर को कन्या देना, उसका आदर बढ़ाना है। आर्ष विवाह में शुक्ल लेना मनु के विरुद्ध में है, क्योंकि तीसरे अध्याय के 29वें श्लोक में जो आर्ष विधि की व्यवस्था विहित है, 51वें से 54वें श्लोक में जो विरुद्ध और खंडनात्मक वर्णन है, यहां पर शंका उत्पन्न होती कौन सी मान्यता मौलिक या कौन सी सही मानी जाए, कौन से इसमें प्रक्षिप्त होनी चाहिए। इन श्लोकों की शैली शब्दावली को देखकर इसका समाधान उपलब्ध हो जाता है। मनुस्मृति का उद्देश्य ही हितकारी धर्म विधान करने का है, अहितकारी बात धर्म नहीं, इसलिए मनु उसको अधर्म घोषित करके उनका निषेध करते। इस प्रसंग में संपूर्ण मनुस्मृति में भिन्न शैली और शब्दावली, तदनुसार उक्त शंका का समागम इस प्रकार किया जाता है कि मनु ने तीसरे अध्याय के 20 से 34वें श्लोक में जो 8 प्रकार के विवाह प्रदर्शित किए हैं, वे उन स्वयंकृत विधान नहीं है, अपितु उस समय जो किसी रूप में प्रचलित थे उनका वर्णन मात्र किया है। इसीलिए मनु ने प्रसंग संकेतक श्लोक तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में प्रेत्य चेहि हि अहितान, हित अहितान का प्रयोग किया। अहितकर कोई धर्म नहीं होते, फिर भी यहां उनका वर्णन है, जिससे स्पष्ट प्रयोग होता है ये विधान नहीं मात्र प्रचलित प्रथाओं के बारे में मनु ने वर्णन किया है। अंतिम चार विवाहों के लिए प्रयुक्त नाम भी इन्हें धर्म विधान सिद्ध नहीं करते। वे हैं आसुर, गांधर्व, राक्षस, अधम, पैशाच। इनकी जो विधियां हैं वे भी मनुस्मृति की मान्यताओं के अनुसार निंदनीय है। अगले श्लोकों में तीसरे अध्याय के 41वें से 42वें श्लोक में मनु ने इसकी निंदा करी है। उन्हें आनार्यों की परंपरा मान्या है और निषेध रूप से विहित किया है। इतना ही नहीं, तीसरे अध्याय के 32वें और 34वें श्लोक में विहित कार्यों के लिए मनु ने कठोर दंडों का भी विधान किया है। 8वें अध्याय में 352वें श्लोक में वे इन बातों को बलात्कार व ब्रह्मचार्य मानते हैं, और तीसरे अध्याय के 41वें श्लोक में वर्णित आसुर विवाह का खंडन करते हैं, विक्रय रूप कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि मनु की मान्यता क्या है और इसमें धर्म विधान कौन से हैं? इससे स्पष्ट है, क्योंकि तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में मनु ने जिन आरंभिक चार विवाहों का जन्म और पराजन्म के लिए हितकारी माना है, वे ही मनुविदित धर्म विधानात्मक विवाह हैं, और जिनको निंदनीय माना है अंतिम चार विवाहों को, आसुर, पिशाच, गंधर्व, इन विवाहों को निंदनीय मानकर उनका अधर्मात्मक वर्णन किया है, निषेध किया है। उनके अनुसार वे वैधानिक एवं धर्म नहीं है। अतः प्रारंभिक चार विवाहों में ही मनु ने धर्मानुकूल विधान किया है। इस प्रकार इन श्लोकों और पूर्व के श्लोकों में विरोध होते हुए भी मान्यता प्रदर्शन के कारण दोनों मौलिक ही हैं। तीसरे अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान कहते हैं स्त्रियों का आदर के बारे में और उनका फल भी साथ ही में कहते हैं 56वें श्लोक में,
पितृभिर्भ्रातृभिश्चैता पतिभिर्देवरैस्तथा पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सितु। पितृभिर्भ्रातृभिश्चैता पतिभिर्देवरैस्तथा पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणम् मीप्सुभिः। पितृ भी भ्रातृ भी पितृ भी पति भी च देवरै, पिता भ्राता पति और देवर के योग्य है। केताः पूज्याः च भूत भूषति तव्याः, अपनी कन्या बहन स्त्री और भौजाई आदि स्त्रियों की सदा पूजा करें, अर्थात योग्य अयोग्य मधुर भाषण भोजन वस्त्र आभूषण आदि से प्रसन्न रखे। यत्र नार्यास्तु पूजन्ते रमन्त्रे तत्र देवता, जहां पर स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं।
यत्रैतास्तु न पूजन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रिया,
अर्थात जहां पर उनकी पूजा नहीं होती, यत्रैतास्तु न पूजन्ते जहां पर उनकी पूजा नहीं होती, तत् सर्वा अफला क्रिया, वहां जानो उन सब की सब क्रिया निष्फल है। जिस घर में स्त्रियों का सत्कार होता है उसमें विद्यायुक्त पुरुष होके देव संज्ञा धरा के आनंद की क्रीड़ा करते हैं, और जिस घर में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहां सब क्रिया निष्फल है। इसके अनुशीलन में भगवान मनु कहते हैं, स्त्रियों के शोक ग्रस्त रहित परिवार से विनाश हो जाता है, क्योंकि
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यन्त्याशु तत्कुलम् न शोचन्ति तु यत्रैषा वर्धते तद्धि सर्वता।
यत्र जिस कुल में जामयः स्त्रियां शोचन्ति अपने अपने पुरुषों के वैश्यागमन अत्याचार व्यभिचार आदि दोषों के लिए शोकातुर रहती हैं, तत्कुलम आशु विनश्यत, उस कुल की जल्दी ही विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और न तु यत्र एता न सोचन्ति, जिस कुल में स्त्री जन पुरुषों के उत्तम आचरणों से प्रसन्न रहती हैं, तत्र ही सर्वदा वर्तते, वहां कुल सर्वदा बढ़ता है। जिस घर या कुल में स्त्री लोग शोकातुर होकर दुख पाती हैं, वह कुल शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, और जिस घर या कुल में स्त्री लोग आनंद और उत्साह से प्रसन्नता से भरी रहती हैं, वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता है।
58वें श्लोक में भगवान मनु कहते, जामयो यानि गेहानि शपत्यन् प्रतिपूजिता तानि कृत्या हतानीव विनश्यन्ति समन्ततः।
यानि गेहानि, जिन कुल और घरों में अप्रतिपूजिताः जामयः, अपूजित अर्थात सत्कार को प्राप्त न होकर स्त्री लोग शपन्ति, जिन गृहस्थों को शाप देती हैं, तानि वे कुल या गृहस्थ कृत्याहतानीव, जैसे विष देकर लोगों को एक बार में नाश कर देवे, वैसे समंततः विनश्यति, चारों ओर से नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। जो विवाहित स्त्रियां पति माता पिता बंधु देवर आदि से दुखित होके जिन घर वालों को साप देती हैं, वे जैसे किसी कुटुंब भर को विष देकर मारने के समान एक साथ सब मर जाते हैं, वैसे ही पति आदि के सब सब नष्ट भ्रष्ट हो जाते। इसलिए 59वें श्लोक में भगवान मनु कहते हैं स्त्रियों को सदा सम्मान करना चाहिए। तस्मादेता सदा पूज्या भूषणाक्षादनाशनै भूतिकामैर नरैर नित्यं सत्कारेषु उत्सवेषु च। तस्मात् भूतिकामैः नरैः, इसलिए ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले योग्य पुरुष को चाहिए कि एताः सत्कारेषु च उत्सवेषु, इन स्त्रियों को सत्कार के अवसरों और उत्सव के अवसरों पर भूषण आच्छाद अशनैः, भूषण आच्छादन अशनैः, भूषण वस्त्र खान पान आदि से सदा पूज्या, सदा पूजा अर्थात सत्कार युक्त प्रसन्न रखना चाहिए। अर्थात ऐश्वर्य की कामना करने वाले मनुष्यों को चाहिए कि सत्कार और उत्सव के समय अन्य दिनों में भी भूषण वस्त्र और भोजन आदि से स्त्रियों की नित्य प्रति सत्कार करें। साठवें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिस परिवार में पति पत्नी परस्पर संतुष्ट रहते हैं, मेल मिलाप रहता है, उस परिवार का कल्याण होता है। संतुष्टो भार्या भरता, भरता भार्या तथैव च। संतुष्टो भार्या भरता, भरत्रा भार्या तथैव च, यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्वै ध्रुवम्। अर्थात हे गृहस्थो, यस्मिन् कुले, जिस कुल में भार्या भरता संतुष्टः तथैव भरता भार्या नित्यं, भार्या से प्रसन्न पति तथा पति से भार्या सदा प्रसन्न रहती है, तत्र वै उसी कुल में ध्रुवम कल्याणम, निश्चित ही कल्याण होता है। और दोनों परस्पर अप्रसन्न रहें तो कुल का विनाश हो जाता है, कलहवास करने लगती है। जिस कुल में भार्या से भरता और पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न रहती है, उसी कुल में सब सौभाग्य और ऐश्वर्य निवास करते। 61वें श्लोक में पति पत्नी में पारस्परिक अप्रसन्नता के बारे में भगवान कहते हैं कि उसका फल होता है संतान न होना, वो निर्वंशी हो जाते हैं। यदि स्त्री न रोचेत पुमांश न प्रमोदेत अप्रमोदात पुनः पुंशः प्रजनम न प्रवर्तते। यदि ही स्त्री न रोचते, यदि स्त्री पुरुष पर रुचि न रखे, पुमान सुनर प्रमोदयेत पुरुष को प्रहर्षित न करे, तो अप्रमोदात पुनः पुंशः अप्रसन्नता से पुरुष के शरीर में प्रजनम न वर्तते, कामोत्पत्ति न हो के संतान नहीं होते, और होते हैं तो वे दुष्ट होते। जो स्त्री पति से प्रीति और पति को प्रसन्न रही रखती तो पति के अप्रसन्न होने से काम उत्पन्न नहीं होता, और जिससे संतान उत्पन्न नहीं होती, और होती भी है तो वह अत्यंत दुष्ट होती है। स्त्री की प्रसन्नता पर कुल की प्रसन्नता आधारित होती है। भगवान मनु 62वें श्लोक में इसका वर्णन करते हैं। स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलं, तस्यां तु रोचमानायां सर्वमेवं न रोचते। स्त्रियां तु रोचमानानां, जो पुरुष स्त्री को प्रसन्न नहीं करता तो उस स्त्री के अप्रसन्न रहने से सर्वं एव न रोचते, सब कुल भर अप्रसन्न शोकातुर रहता है। तो स्त्रियां रोचायमानम, और स्त्रियों के रोचमान होने से अर्थात प्रसन्न रहने से क्या होता है, तब सर्वम कुलम रोचते, उस समय सर्वत्र कुल आनंद रूप दिखता है। स्त्री की प्रसन्नता में सब कुल प्रसन्न होता है और उसकी अप्रसन्नता में सब अप्रसन्न अर्थात दुखी रहते हैं। भगवान 63 से 66 श्लोक तक कुलों को पतित करने वाले कर्मों के बारे में वर्णन करते हैं। 63वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कुविवाहैः क्रियालोपैर् वेदाध्ययनेन च कुलान्यकुलातायां यान्ति ब्रह्माणि क्रमेत। कुविवाहैः क्रियालोपैर् वेदाध्ययनेन च कुलान्यकुलतां यान्ति ब्रह्माण्याति क्रमेण च। कुविवाह ही निंदित विवाहों को करने से, क्रियालोपय यज्ञादि क्रियाओं के लोप से, च वेदा अनध्ययनेन और वेदों के न पढ़ने से, च ब्राह्मण अतिक्रमेण और ब्राह्मणों का निरादर करने से, उसकी आज्ञा न मानने से, कुलानि सभी कुल अकुलताम यान्ति पतितिया नष्ट हो जाते। 64वें श्लोक में शिल्पेन व्यवहारेण शूद्रात्पत्यैश केवलैः गोभिरश्वैश्च यानैश्च कृष्याराजोपशेवव्या अयज्ञा अयाज्य यजमानैश्चैव नास्तिक्येन च कर्मणां कुलान्याशु विनश्यन्ति यानि हीनानि मन्त्रतः। शिल्पेन व्यवहारेण कारीगरी की जीविका करने से, व्यवहार करने केवल ही शूद्र शूद्रा अपत्यई केवल शूद्र स्त्री संतानों से, च गोभी च अश्वई और गो बैल और घोड़ों का व्यापार करने से, यानई सवारियों का व्यापार करने से, उनका जीविक उनसे जीविका चलाने से, कृष्या कृषि करने से, राजा उपसेव या राजा की नौकरी करने से, च अयाज्य याजनई और यज्ञ कराने के अयोग्य व्यक्तियों से यज्ञ कराने से, कर्मणाम नास्तिकेन श्रेष्ठ कर्मों के प्रति नास्तिकता की भावना रखने से, यानि हीनानि मंत्रतः जो परिवार वेद मंत्रों से रहित हैं, कुलानि आशु विनश्यन्ति ऐसे कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं और भ्रष्ट हो जाते हैं। 66वें श्लोक में मंत्रतस्तु समद्धानि कुलान्यल्पाधनानि चन्यपि कुलसंख्यां च गच्छन्ति करशन्ति महद्यश। तु मंत्रतः समद्धानि कुलानि और वेद मंत्रों के समृद्ध कुल, अल्पधनानि अपि बहुत थोड़े धन वाले होते हुए भी, कुलसंख्यां गच्छन्ति विशिष्ट कुलों में गिने जाते, च महत यशः कर्षन्ति और ऐसा ऐसे कुल बहुत महान यश को प्राप्त करते हैं। यहां पर कुछ विद्वान अंतर विरोध स्पष्ट करते हैं और इन्हें प्रक्षिप्त श्लोक बताते हैं। क्योंकि 64वें श्लोक का मनुस्मृति की आधारभूत व्यवस्था के ही विरुद्ध है। इसमें निर्दिष्ट शिल्प कृषि पशु रक्षा कर्म वैश्य और राजा की सेवा क्षत्रिय कर्म है और इन्हीं के आधार पर मनु ने वैश्य और क्षत्रिय आदि के वर्णभेद को माना है। स्थान स्थान पर अपने इन कर्तव्यों के पालन से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होना कहा है। इस श्लोक में इसके आधार पर कुल का विनाश मानना मनुस्मृति के आधारभूत व्यवस्था के विरुद्ध जाना है। इस प्रकार यह श्लोक प्रक्षिप्त माना गया है। अन्य पूर्व अपर 3 श्लोकों में इससे संबंध होने के कारण स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। क्योंकि 64वें और 65वें श्लोक में कारण पूर्ण हो जाता है। 6वें श्लोक के मंत्रतस्तु समद्धानि और 65वें श्लोक के यानी हीनानि मंत्रतः शब्दों से इसका संबंध है। दूसरी बात, यहां पर प्रसंग विरोध की आती है। विवाहों के गुण अवगुणों और लाभ हानियों का वर्णन विवाहों के उल्लेख के बाद वहां यहां उसका पुनः विवेचन करना प्रासंगिक नहीं है। दूसरी बात यह कि यहां पर पूर्व अपर प्रसंग विवाह के पश्चात स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए और इसका क्या परिणाम होते हैं तथा स्त्री पत्नी के क्या कर्तव्यहीन बातों का है, इस बीच कुलों की उन्नति अवनति का विवेचन संगत सिद्ध नहीं होता। दूसरी बात यहां पर पुनरुक्ति की आती है। इन श्लोकों में कही हुई बातों की पुनरुक्ति मात्र है। अयाजनैः नास्तिक्येन च कर्मणां वेदाद् अनध्ययनेन यानि हीनानि मंत्रतः, ये सब पुनरुक्तियां हैं, ये पहले कही जा चुकी हैं। इस प्रकार की पुनरुक्तियां मनुसदस्य विद्वान की भाव गंभीर युक्त रचनाओं में उपलब्ध नहीं होती, अतः ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं। सड़सठवें श्लोक से 286वें श्लोक तक तीसरे अध्याय के 66वें श्लोक से दूसरे 283वें श्लोक तक भगवान मनु ने पंच महायज्ञ का विधान और विषय बताया है। 67वें श्लोक में भगवान कहते हैं पंच महायज्ञों का विधान करते हुए, वैवाहिके ग्नौ कुरवीता गृहं कर्म यथा विधि पंचयज्ञ विधानं च पंक्तिं चान्वाहिकीं गृही। गृही यानी कि गृहस्थ पुरुष विवाहिके अग्नौ, विवाह के समय प्रज्वलित की जाने वाली अग्नि में या गृहस्थ रूप अग्नि में गृहं कर्म यथा विधि, गृहस्थ के सभी कर्तव्यों को जैसे पाचन याजन और संतानोत्पत्ति आदि उचित विधि के अनुसार कुर्वीत करे, च पंच यज्ञ विधानम और होम दैव आदि पांच यज्ञों को, तथा अन्वाहिकीम पंक्तिम प्रतिदिन भोजन पकाना ये भी करे। पंच महायज्ञों के अनुष्ठान के कारण भगवान बताते हुए 68वें श्लोक में कहते हैं, पंचसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेशस्युपस्करः कुंडनी चोदकुंभस्य बध्यते यास्तु वाहनम्। चुल्ली चूहा, पेशणी चक्की, उपस्करः झाड़ू, किंडनी ओखली तथा उदकुंभो पानी का घड़ा, गृहस्थस्य पंचसूना गृहस्थियों के पंच हिंसा के स्थान, याह तु वाहयन जिनको प्रयोग में लाते हुए गृहस्थी व्यक्ति बद्धते हिंसा के पापों में बंध जाता है, तासाम क्रमेण सर्वासाम निष्कृत्यर्थम महर्षिभिः पंचकृत्ताम महायज्ञा प्रत्यहम गृहमेधिनाम। क्रमेण क्रम से तासाम सर्वासाम निष्कृत्यर्थम, उन सब हिंसा दोषों की निवृत्ति या परिशोधन के लिए ग्रह मेधिनाम प्रत्यहम, गृहस्थी लोगों के लिए प्रतिदिन करने के लिए महर्षयः महर्षियों ने पंच महायज्ञाः कृताः कृप्ताः, पंच महायज्ञों का विधान किया है। उन पांच महायज्ञों के बारे में बताते हुए भगवान कहते हैं, अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो दैवो बलिर्भीतो नृयज्ञातो अतिथिपूजनम। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ, पढ़ना पढ़ाना सांध्योपासन करना सावित्री मध्यपदीति ब्रह्मयज्ञ कहलाता है। तू तर्पणम पितृयज्ञ और माता पिता आदि की सेवा शुश्रूषा भोजन आदि से तृप्त करना पितृयज्ञ कहलाता है। होमः दैवः प्रातः होम यज्ञ करने से या सायं हवन करने से देव यज्ञ है। बलि ही बहुता है। कीटों पक्षियों कुत्तों और कुष्ठी व्यक्तियों तथा भृत्यों आदि को भोजन का भाग बचा कर देना भूत यज्ञ बलि यज्ञ वैश्यदेव यज्ञ कहलाता है। अतिथि पूजनम, अतिथियों का पूजन और भोजन करना सेवा सत्कार करना नयज्ञ कहलाता, अतिथि यज्ञ कहलाता है। इसके महत्व को बताते हुए 71वें श्लोक में भगवान कहते हैं, पंचैतान्यो महायज्ञन नहापयति शक्तितः सग्रहेपि वशिन् नित्यं सूनादोषैर्नलिप्यते। यह एतान पंचमहायज्ञान शक्तितः नहापयति, जो इन पांच यज्ञों को यथाशक्ति नहीं छोड़ता, सह ग्रहे अपि वसन घर में रहते हुए भी नित्यम सूना दोषई नलिप्पते, प्रतिदिन चुल्ली चूहा आदि में हुई हिंसा के दोषों में लिप्त नहीं होता। यतो ही यज्ञों के पूर्ण से उनका समन हो जाता है, क्योंकि इन यज्ञों को करने से जो पंच यज्ञ हैं व्यक्ति उन हिंसा से मुक्त हो जाता है। देवता थेति वृत्यानाम पितृणाम आत्मश्रश्यः सनिर्वपतिष्पञ्चानाम उक्षवसन सजीवति। देवता थेति वृत्यानाम पितृणाम आत्मनश्यः सनिर्वपति पञ्चानाम उक्षन वसन सजीवति। जो गृहस्थ व्यक्ति यह देवता अतिथि भृत्यानाम पितृणाम आत्मनः पंचानाम अग्नि आदि देवताओं को हवन के रूप में, अतिथियों को अतिथि यज्ञ के रूप में, भरण पोषण की अपेक्षा रखने वाले या दूसरों की सहायता पर आश्रित कुष्ठी भृत्य आदि के लिए भूत यज्ञ विश्व देव यज्ञ बलिवैश्व देव यज्ञ नहीं करता, माता पिता पितामह के लिए पितृयज्ञ, आत्मा के लिए ब्रह्म यज्ञ, इन पांचों यज्ञों के लिए न निवरपति, जो नहीं करता, उनके भागों को नहीं देता, अर्थात पांच दैनिक महायज्ञों को नहीं करता, सह उक्षवसन न जीवति, वह सांस लेते हुए भी वास्तव में जीवित नहीं है, मरे हुए व्यक्ति के समान है। इन जो पांच यज्ञों के नामांतर हैं उसको बताते हुए 73वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अहुतम च हुतम चैव तथा प्रहुतमेव च ब्राह्म्ययम् हुतपाशितम् च पंचयज्ञान प्रचक्षते। पंचयज्ञान इन पांच यज्ञों को अहुतम हुतम प्रहुतम ब्राह्म्यम हुतम च प्राशितम एव, अहुत हुत प्रहुत बाह्य हुत और प्राशित भी प्रशक्तते कहते हैं। जपो हुतो हुतो होमः प्रहुतो भौतिको बलिः ब्राह्म्यम हुतम द्विजाचर्याम प्रशितम पितृतर्पणम अहुतः जपः। अहुत जप यज्ञ अर्थात ब्रह्म यज्ञ को कहते हैं। हुतः होमः, हुत होम अर्थात देव यज्ञ है। प्रहुत भौतिक बलि और प्रहुत भूतों के लिए भोजन का भाग रखना अर्थात भूत यज्ञ बलि वैश्व देव यज्ञ है। ब्राह्म्य हुतम ब्राह्म्य हुत दुर्गा द्विजाग्र यार्चा विद्वानों की सेवा, द्विज अग्र अर्चा द्विजों में अग्रणी जो ब्राह्मण है उसकी अर्चा अर्थात सेवा करना पूजन करना अतिथि यज्ञ है। प्रशितम पितृतर्पण और प्राशितम पितृतर्पण का अर्थ प्राशित माता पिता आदि का तर्पण तृप्ति करना पितृ यज्ञ। अगले श्लोक में ब्रह्म यज्ञ तथा अग्निहोत्र का विधान बताया गया है। स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यात् दैवे चैवेह कर्मणि दैवकर्मणि युक्तो हि विभरति इदं चराचरं। स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यात्। मनुष्य को चाहिए कि वो पढ़ने पढ़ाने और संध्या उपासना अर्थात ब्रह्म यज्ञ में नित्य लगा रहे, अर्थात प्रतिदिन अवश्य करें। और देव कर्मणि एव, और देव कर्म अर्थात अग्निहोत्र में भी अवश्य करें ही, क्योंकि यह संसार में रहते हुए दैव कर्मण युक्त इदम चरम अचरम विभर्जी। दैव कर्मण युक्त अग्निहोत्र करने वाला व्यक्ति इदम चर अचरम विभर्ति इस समस्त चेतना और जड़ जगत का पालन पोषण और भला करता है। अग्निहोत्र से जलवायु की शुद्धि होकर भक्ष्य पदार्थों की शुद्धि एवं पुष्टि होती है और उनसे प्रजाओं तथा अन्य पदार्थों का कल्याण होता है। इस प्रकार चर और अचर जगत का पोषण होता है। अगले श्लोकों में इसका स्पष्टीकरण किया गया है। अग्निहोत्र से लाभ के बारे में बताते हैं। अग्नौ प्रस्ताहुते सम्यक् आदित्यम् उपदिश्यते आदित्याज्जायते वृष्टिर् वृष्टेरतनम् तदा प्रजा। वह पालन पोषण और भला इस प्रकार का होता है। अग्नौ सम्यक् प्रस्ताह आयुति, अग्नि में अच्छी प्रकार डाली गई हुई घृत आदि पदार्थों की आहुति। आदित्यम उपतिष्ठति, सूर्य को प्राप्त होती है। सूर्य की किरणों से वातावरण में मिलकर अपना प्रभाव बनाती है। फिर आदित्या जायते वृष्टि, सूर्य से वृष्टि होती है। वृष्टेह अन्नम, वृष्टि से अन्न पैदा होता है तथा प्रजा और उनसे प्रजाओं का पालन होता है। अग्नौ प्रस्ताहुते सम्यक् आदित्यम उपतिष्ठते आदित्या जायते वृष्टिर वृष्टेरतनम तदा प्रजा। क्या होम करने के बिना पाप होता है? इस प्रकार का प्रश्न होने पर इसका प्रश्न मिलता है, हां, क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर में जितना दुर्गंध पैदा होके वायु और जल को बिगाड़कर रोगों प्रति निमित्त होने से प्राणियों के दुख प्राप्त कराता है, उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है। इसलिए पाप के निवारणार्थ उस सुगंध व उससे अधिक वायु और जल में फैलाना चाहिए। गृहस्थाश्रम की महत्ता और ज्येष्ठा को बताने के लिए 77वें श्लोक में भगवान मनु कहते हैं, यथा वायुम समाश्रित्य वरतन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थम आश्रित्य वरतन्ते सर्वाश्रमा। यथा वायुम समाश्रित्य वर्तते सर्वजन्तवः वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थम आश्रित्य वरतन्ते सर्वाश्रमा। जैसे वायु के आश्रय में सब जीवों का वर्तमान सिद्ध होता है, वैसे ही गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी अर्थात सब आश्रमों का निर्वाह वर्तन्ते निर्वाह होता है। यस्मात्त्रयो प्याश्रमिणो दानेनान्नेन चान्वहम् गृहस्थे नैव धार्यन्ते तस्माज्जेष्ठास्मो गृही। यस्माद् जिसने जिससे त्रयः अपि आश्रमिणः ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी इन तीनों आश्रमियों के लिए अन्नेन दानेन अन्वहम् अन्न वस्त्रादि दान से नित्य प्रति गृहस्थेन एव धार्यन्ते गृहस्थ धारण पोषण करता है, तस्माद् अतः इसलिए गृही आश्रमः ज्येष्ठः, व्यवहार से गृहस्थ आश्रम बड़ा है, धुरंधर कहा जाता है। जिसमें गृहस्थ ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी तीनों आश्रमों को दान और अन्नादि दे के प्रतिदिन गृहस्थ ही धारण करता है, इससे गृहस्थ ज्येष्ठ आश्रम है अर्थात सब व्यवहारों में धुरंधर कहाता है। गृहस्थ के योग्य कौन, इसके बारे में 79वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सधर्मार्यः सधन ससजन धार्य प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमक्षता सुखम चेहे क्षता नित्यं यो धार्यो दुर्बलेन्द्रियः। स संधार्यः प्रयत्नेन स्वर्गम अक्षयमिश्रिमिक्षता सुखम चेहे क्षता नित्यं यो धार्यो दुर्बलेन्द्रियः। हे स्त्री पुरुषो, जो तुम अक्षयम स्वर्ग इक्षता च सुखम इक्षता, यदि अक्षय मुक्ति के लिए या इस संसार में सुख की इच्छा करते हो, यह सर्वर दुर्बलेन्द्रियः अर्धाय, जो दुर्बल इंद्रिय और निर्बुद्धि पुरुषों को धारण करने योग्य नहीं है, सह नित्यम प्रयत्नेन संधार्या, उस गृहस्थ आश्रम को नित्य प्रयत्न से धारण करो। इसलिए जो मोक्ष संसार की सुख की इच्छा से हो करता हो, वह प्रयत्न से गृहस्थ आश्रम का पालन करे। स्वर्ग से अभिप्राय यहां पर स्वर्गलोक से संबंधी मान्यताओं से नहीं है, यहां पर मोक्ष से, जो कभी नित्य रहता है वो स्वर्ग, मोक्ष से अभिप्राय यहां पर भगवान मनु का है। क्योंकि सुख के अर्थ या पर्यावाची रूप में अन्यत्र भी स्वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया। अश्वर्ग चाति भोजनम, अति भोजन दुख देने वाला है। दाराधीनस्तथा स्वर्ग पितृणामात्मनश्च, पत्नी के अधीन ही सुख है। स्वर्गमायुष्यस्यास्यानि व्रतानि नाम न धारयेत्। अक्षय सुख अर्थात मोक्ष सुख के लिए स्वर्ग का प्रयोग। स्वर्गम अक्षय मिक्षिता, अक्षय सुख जो कभी नष्ट न हो अर्थात मोक्ष। इदं मन्विक्षिताम स्वर्गम, इदमान्यतिमिक्षिताम। मनु ने 12वें अध्याय के 9वें श्लोक और 35वें श्लोक से 39वें श्लोक से 52वें श्लोक में मृत्यु के बाद जीव को उसके कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली योनियों के बारे में वर्णन किया है। उस प्रसंग में स्वर्गलोक या स्वर्ग योनि विशेष कोई उल्लेख नहीं है। व्याकरण शास्त्र अनुसार स्वर्ग शब्द स्वर उपनिषद में उपपद में ग्लर गतौ धातु से ड प्रत्ययेन प्रत्ययेन निमेष्यपि दृश्यते। अष्टाध्यायी तृतीय अध्याय के 248वें वार्तिक सूत्र से गह प्रत्यय से के योग से बना है। स्वः सुख का अनुभव होना, सुख में प्रविष्ट होना, सुख की प्राप्ति होना स्वर्ग अर्थात सुख है। स्वर्ग लोक का अभिप्राय है लोकर दर्शने, धातु से लोक शब्द बनता है अर्थात जहां सुख दिखे, सुख प्राप्त होता, जहां सुख का दर्शन होता वही स्वर्ग। 80 श्लोक संख्या में भगवान कहते ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथियंस्तथा आशाते आशायते कुटुंबिस्त यस्ते भ्याह कर्म विज्ञानतः। ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथियंस्तथा आशायते कुटुंबिस्च तेभ्यः कार्यं विजानता। ऋषयः पितरः भूत देवाः भूतानि च या अतिथयः। ऋषि मुनि लोग माता पिता अग्नि तथा देवता भृत्य तथा कुष्ठी आदि अतिथि लोग कुटुंबिभ्या आशायते, गृहस्थों से आशा रखते हैं अर्थात सहायता की अपेक्षा करते हैं। विजानता तेभ्यः कार्यम, अपने गृहस्थ संबंधी कर्तव्यों को समझने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह इसके लिए सहायता कार्य करे। भगवान पंचयज्ञों के मुख्य कर्म बताते हुए 21वें श्लोक में कहते हैं, स्वध्यायेनार्चयेष् दस्यैर् होमैर्देवान्यथा विधि पितृन् श्राद्धैश्च नन्नैर् भूतानि बलिकर्मणा। स्वाध्यायेन ऋषीन, स्वाध्याय से ऋषि पूजन, यथाविधि होमैः देवान, यथाविधि होम से देव पूजन, श्राद्धैः पितृन, श्राद्धियों से पितृ पूजन, अन्नैः ऋण और अन्नों से मनुष्य पूजन च, और बलिकर्मणा भूतानि, और वैश्यदेव बलि से प्राणों प्राणी मात्र का सत्कार करना चाहिए। इस श्लोक में महर्षि दयानंद प्रकाश डालते हुए कहते हैं, इस श्लोक से क्या आया कि होम जो है सो ही देव पूजा है, अन्य कोई नहीं, और होम स्थान जितने हैं वे ही देवालय शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। पूजा का नाम सत्कार, क्योंकि अतिथि पूजनम दैवार होम दैवार न अर्चयेत, अतिथियों का पूजन का नाम ही सत्कार है, तथा देव परमेश्वर और मंत्र इन्हीं का सत्कार, इसका नाम और पूजा अन्य नहीं है। इस कथन में अर्वाचीन देवालय अर्थात मंदिरों को कोई न समझे, देवालय का अर्थ तो यज्ञशाला है, ऐसा कहते हुए भगवान महर्षि दयानंद बताते हैं। श्राद्ध का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि श्रद्धा से किया गया कार्य, जैसे श्रद्धा पूर्वक माता पिता की सेवा शुश्रूषा करना, भोजन आदि, यही पितरों का तर्पण और पितृयज्ञ है। पितृयज्ञ का विधान बताते हुए भगवान मनु कहते हैं, कुर्याद अहरह श्रद्धाम अन्नादेनीदकेन वा पयोमूल फलैर्वापि पितृभ्या प्रीतिमावहन। कुर्यान अहरहः अर्थात गृहस्थ व्यक्ति प्रतिदिन अन्नादेन वा उदक केन अपि वा पयः मूलैः फलैः, अन्न आदि भोज्य पदार्थों जैसे जल दूध कंदमूल फल आदि से पितृभ्या प्रीतिम आवहन, माता पिता आदि बुजुर्गों के अत्यंत प्रेम करने करते हुए उनको देना चाहिए, सेवा शुश्रूषा करना चाहिए और इन सब कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। पितृयज्ञ पर विचार करते हुए ब्राह्मण अत्यंत विवेचनशील हो जाते हैं। यहां पर आपको विस्तार से पितृयज्ञ के बारे में बताया जाएगा।